नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम के लिए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। इससे कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जीबी पंत अस्पताल में लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत वाले सिटी स्कैन, नई कैथ लैब और न्यूरो आईसीयू जैसी आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का उद्घाटन किया। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। और क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। आज जारी किए गए इसके दूसरे वीडियो में उन्होंने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर बातचीत की। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं से परे देखने और जीवन कौशल, खेल, रचनात्मकता तथा आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने वेड इन इंडिया अभियान का भी जिक्र किया, जो विदेश के बजाय देश में ही शादी समारोह आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा, मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ वेड इन इंडिया। अब कुछ लोग पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे, वहाँ हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई। हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना दायित्व निभा सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया।
अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है यार, लेकिन ये जोतेगा नहीं और बारिश आ गई फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम के लिए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। इनमें से 1100 करोड़ रुपए सीधे तौर पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन, पेंशन और अन्य देयताओं के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं कर्मचारी कल्याण के साथ साथ परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस पहल से दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ कर्मचारियों का सम्मान और राजधानी के लोगों को आधुनिक, आसान तथा भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज जीबी पंत अस्पताल में सीटी स्कैन, नई कैथ लैब और न्यूरो आईसीयू का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने लगभग 31 करोड़ रुपए की लागत वाले इन आधुनिक चिकित्सा उपकरणों को जनता को समर्पित किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अस्पताल में स्थापित ये सिटी स्कैनर कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल रोगों के तेजी से और सटीक निदान के साथ साथ विकिरण को कम करने में मदद करेगा। वहीं बिस्तरों वाले आधुनिक न्यूरो आईसीयू में मरीजों को 24 घंटे गहन निगरानी और विशेष उपचार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य निजी अस्पतालों के समान सरकारी अस्पतालों में सुलभ और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस दिशा में राजधानी के अस्पतालों को लगातार आधुनिक सुविधाओं और नई मशीनों से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे स्वस्थ और विकसित दिल्ली की मजबूत नींव रखी जा सके।
सरकार का लक्ष्य भी यही है कि हम पूरी तरीके से अपने अस्पतालों में दिए जाने वाले इलाज को इतना अपडेटेड करें, उसमें अमीर गरीब का फर्क पूरी तरीके से खत्म हो, और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की दहलीज पे जो इलाज मिलता है उसके लिए कोई व्यक्ति मोहताज ना हो। नॉर्थ इंडिया में ये पहले प्रकार का सिटी स्कैनर है जो दिल्ली में लगा है और दिल्ली के हमारे जीबी पंत हॉस्पिटल में लगाया गया है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज जीबी पंत अस्पताल में सरकार ने पुरानी मशीनों को हटाकर लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की है।
हमने न्यूरो आईसीयू को अपग्रेड किया, लेटेस्ट अपग्रेड किया, क्योंकि वहाँ पुरानी मशीनें थी, लोग को उसकी फैसिलिटी मिले। साथ में हमने न्यूरो कैथ लैब चालू किया, जिससे आम जनता को उसका लाभ मिले। जो एक न्यूरो डिवीजन के लिए अलग से कैथ लैब हमने चालू किया है। साथ में हमने जो सीटी स्कैन लेकर आए हैं, वो माइन्यूट चीजों को भी पकड़ लेगा और वो नॉर्थ इंडिया में कहीं भी नहीं लगा हुआ है।
सफदरजंग अस्पताल में अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत 16 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर संदीप बंसल ने नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में परिवारों को संबल देना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 में इस वर्ष भारत और दुनिया भर की विविध कला, संस्कृति और शिल्प का भव्य संगम देखने को मिल रहा है। इस मेले में भागीदार राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश और मेघालय शामिल है, वहीं भागीदार देश के रूप में मिस्र है। एक रिपोर्ट।
मेले में मेघालय पवेलियन खास आकर्षण बना हुआ है, जहां बांस से तैयार ट्री हाउस, सजावटी वस्तुएं और पारंपरिक वाद्य यंत्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल बांस के उत्पाद अपनी बारीक कारीगरी और प्राकृतिक सुंदरता के कारण आगंतुकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पवेलियन में संगमरमर के कप, प्लेट, साइड टेबल, शतरंज सेट और नक्काशीदार पेंटिंग है, जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन में भागीदार देश मिस्र के जूट के हस्तशिल्प बैग और सिरेमिक कला के कप तथा बर्तनों की भी काफी सराहना की जा रही है। इसके अलावा घाना का स्टॉल अपने पारंपरिक आदिवासी मुखौटे, प्राचीन वस्तुओं और एवनी लकड़ी से बनी मूर्तियों के साथ आगंतुकों को आकर्षित कर रहा है। सूरजकुंड मेला कला, शिल्प, संस्कृति और संगीत का एक भव्य उत्सव बन गया है, जो भारत और विदेश के पर्यटकों को एक ही मंच पर एक साथ लाता है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
नमो भारत कॉरिडोर के आसपास बेहतर विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस सहयोग का उद्देश्य नमो भारत स्टेशनों के पास ऐसे इलाके विकसित करना है, जहां रहने, काम करने और जरूरी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हों। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 6 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। साथ ही 100 वायु रक्षक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ अभियान केवल सर्दियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे वर्ष लगातार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नए स्टेशन JNU, इग्नू, NSUT के वेस्ट कैंपस, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली कैंट और तालकटोरा गार्डन में स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि अब दिल्ली में इन स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 45 हो गई है।
प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध, ये एक टैगलाइन दिल्ली सरकार ने दी थी और एक बात कही थी कि प्रदूषण पे काम करना मात्र 3-4 महीने, जिस समय मौसम ठंडा होता है और प्रदूषण भारी होता है, ये राउंड द ईयर पूरा एक साल 365 दिन केयर टेकिंग करने का विषय है, उस पे काम करने की जरूरत है। और अपने उस संकल्प को आज फिर से दिल्ली सरकार दोहरा रही है, जब आज हम ये 6 एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस का यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं।
इस अवसर पर उपस्थित दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वायु रक्षक ये सुनिश्चित करेंगे कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित ना रहे, बल्कि जमीन पर लागू हो। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को केवल एक सेक्टर से ही नहीं, बल्कि वाहन, सड़क निर्माण, धूल नियंत्रण और पौधारोपण सभी मोर्चों पर एक साथ नियंत्रित किया जा सके। राजधानी में दिन भर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि अलीपुर क्षेत्र में बुधपुर नाले के दोनों किनारों और संजय गांधी परिवहन नगर मोड़ पर मरम्मत कार्य के कारण इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। इस कार्य के कारण अलीपुर गांव, एनआईटी परिसर, बख्तावरपुर और संजय गांधी परिवहन नगर यूजीआर के कमांड क्षेत्र में आज शाम और कल सुबह पानी की आपूर्ति नहीं होगी या पानी का दबाव कम रहेगा। स्थानीय निवासी आवश्यकता पड़ने पर पानी के टैंकर के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई कार्य के चलते आज और कल कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और ESIC ओखला फेज 1, वहीं कल विपिन गार्डन, नवादा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, भगवती गार्डन, सैनिक विहार, रक्षा एनक्लेव, तिलक एनक्लेव और सराय जुलेना सहित आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली सरकार ने नकली कैंसरोधी दवाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए राजधानी में 25 रिटेल और होलसेल फर्मों का निरीक्षण किया और 55 सैंपल जांच के लिए एकत्र किए। ये अभियान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संचालित किया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ गिरोह का भंडाफोड़ कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 13 किलोग्राम से अधिक की उच्च गुणवत्ता वाले मादक पदार्थ बरामद किए हैं। क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर श्री धवन ने कहा कि जमीनी स्तर पर खेल को सशक्त बनाने की इस पहल को दोनों का पूरा समर्थन प्राप्त है।
शिखर धवन फाउंडेशन के थ्रू हम उन बच्चों तक स्पोर्ट्स और एजुकेशन ले जा रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेस कम है पर जुनून बड़ा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और माननीय शिक्षा और खेल मंत्री श्री आशीष सूद जी का विजन सिंपल है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस प्लेटफॉर्म और सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप अपने सपनों को ग्राउंड पर उतारना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि दिल्ली आपको पहचाने, तो इस मौके को मिस मत करना। बस एक स्टेप लो, www.dellimahakumbh.in पर जाओ और रजिस्टर कर लो।
वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री सूद ने कहा कि श्री धवन का जुड़ना दिल्ली के खेल तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा और राजधानी के बच्चों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने युवा प्रतिभाओं के प्रति क्रिकेटर की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि सरकार समावेशी मंच और अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता पहचान कर उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। नई दिल्ली में एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने रजत पदक जीता। वहीं ईशा सिंह ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वियतनाम की एनगुएन थुए ट्रेंग ने स्वर्ण पदक जीता। ईशा, मनु और रिदम ने कुल 1751 अंक के साथ टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। चीनी ताइपे को रजत जबकि वियतनाम को कांस्य पदक मिला। वहीं इसी स्पर्धा के जूनियर वर्ग में नाम्या कपूर ने स्वर्ण और अंजलि भागवत ने कांस्य पदक जीता। नाम्या ने इंडोनेशिया की रिहातुल आसियफा को हराया। टीम स्पर्धा में जूनियर निशानेबाजों ने स्वर्ण जीता। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में ऑनलाइन गेमिंग की लत युवाओं के स्वास्थ्य के लिए एक बढ़ता खतरा विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित खतरों, मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, लत से छुटकारा पाने के तरीकों और इससे जुड़े अन्य मुद्दों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान श्रोता 0112331481, 0112371717, 0112371716 और 0112331444 नंबर पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण में विद्यार्थियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम के लिए 1200 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। इससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 6 नए सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया और क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।